ये आकाशवाणी है। अब आप करिश्मा राय से समाचार सुनिए। भारत ने पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के दुरुपयोग की कड़ी निंदा की है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को इस बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि यह पाकिस्तान का पुराना तरीका है और भारत इसके खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करता रहा है तथा इस बारे में ओआईसी के मित्रों को अवगत कराता रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ओआईसी में इसी प्रकार के छल कपट करता रहा है और यह बात इस संगठन के मित्रों तथा सदस्य देशों को भली भांति मालूम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपने विचारों से संगठन के सदस्य देशों को अवगत कराता रहेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में विदेश सचिव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे के समाधान के संदर्भ में द्विपक्षीय वार्ता की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत का विचार है कि द्विपक्षीय वार्ता से ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। भारत को इस बात की प्रसन्नता है कि इस दिशा में कुछ किया जा रहा है और सऊदी अरब जैसा एक सहयोगी देश फिर इस मामले में सक्रिय हो गया है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और हत्या की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जबकि इसी तरह के पिछले अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिल रही है। भारत ने अंतरिम सरकार से हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को बिना किसी भेदभाव को के पूरा करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डीसीवी आनंद बोस ने वक्फ संशोधन अधिनियम के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। राज्यपाल ने आज मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज के हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया और इस महीने की 12 तारीख को एक हिंसक भीड़ द्वारा मारे गए पिता पुत्र के परिजनों से भेंट की। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी इंजामलू हक सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। राज्यपाल ने जाफराबाद के हिंसाग्रस्त गांव का भी दौरा किया। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर के नेतृत्व में 5 सदस्यों का एक दल हरगोविंद दास और चंदन दास के परिवार से मिला। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना मजुमदार ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा आम लोगों के साथ है। उन्होंने ग्रामीणों को केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के शहजादे और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यह तीसरी यात्रा होगी। इससे पहले वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में सऊदी अरब गए थे। प्रधानमंत्री की यह यात्रा सितम्बर 2023 में नई दिल्ली में G20 की बैठक में भाग लेने आए शहजादे सलमान की राजकीय यात्रा और भारत सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी परिषद की पहली बैठक की सहअध्यक्षता करने के बाद हो रही है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारत के लिए सऊदी अरब का रणनीतिक भागीदार होने के कारण प्रधानमंत्री की यात्रा महत्वपूर्ण है।
Visit is important on account of the Saudi Arabia as a strategic partner for India. This relationship has for India's energy security. Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक इमारत ढहने से हुई मौतों पर दुख जताया है। श्री मोदी ने उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। श्री मोदी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके साथ ही